नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके ही कार्यक्रम में, जहां पर हम आवाहन करते हैं एक मूल्य आधारित समाज का, एक सशक्त मानवीय जीवन का। यहां पर हम लेते हैं आपके ही सवाल, आपके ही प्रश्न, और उसका उत्तर जानने की कोशिश करते हैं हमारी वरिष्ठ राजयोगिनी बहनों द्वारा। तो आइए, आज भी हमारे बीच हमेशा की तरह उपस्थित हुई है राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी गीता बहन जी। गीता बहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। एक क्वेश्चन है जो झुंझुनू से अभिषेक जी हमें पूछते हैं। वो कहते हैं कि दीदी, मैं बहुत जॉली सा हूँ और बहुत ही हंसना खेलना मजाक करना, सबसे हिल मिल के रहना, बहुत दोस्त बनाना, ये मेरा नेचर है, लेकिन उसके लिए मैं बहुत डांट खाता हूँ। तो मुझे कन्फ्यूजन है, क्या जॉली रहना, हंसता खेलता रहना ठीक होता है, या एक बहुत शांत साइलेंट गंभीर सी पर्सनालिटी बनाए रखना, या इन दोनों के बीच में हार्मनी भी हम ला सकते हैं? वो दोनों सवाल आपको पूछ रहे हैं।
अभिषेक जी, आपका प्रश्न हमने सुना, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप खुशी में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, और इसी के कारण अनेकों के साथ आपकी मित्रता है। ये आपका आनंद का स्वभाव और आपका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छी चीज है। आज अक्सर हम लोगों के जीवन में देखते हैं कि सब कुछ है पर खुशी नहीं
जी,
मनुष्य हंसना ही भूल गया है। और यही कारण है कि आजकल स्पेशली आप देखते हैं कि लाफ्टर चैनल भी चलाते हैं, लाफ्टर क्लबों में भी लोग जाते हैं
बहुत,
क्योंकि एक जो जीवन में खुशी होनी चाहिए वो आज नहीं है। तो आप तो बहुत भाग्यशाली है कि आपका स्वभाव ही खुशी का है और बड़े जॉली नेचर के आप हैं, आपकी अनेकों के साथ मित्रता भी हो रही है। पर आप, हमें ये बात समझ में नहीं आई कि डांट किस कारण से आपको मिलती है। क्या खुशी में रहने का मतलब ये तो नहीं है कि हमारे जो अपने कार्य है या जिम्मेवारियां हैं उसके प्रति हम सिंसियर ना रहे और हर बात को हम एक जॉक बना ले? वो नहीं होना चाहिए। खुश रहना, कितनी भी बड़ी बात आ जाए उसको हल्का कर देना और पार करना, ये तो एक बहुत अच्छा आपका स्वभाव है। और हरेक के साथ आपकी नेचर जो है वो एडजस्ट कर लेती है और आपको मित्रता होती है, ये भी बहुत अच्छी बात है। परंतु आपने क्लैरिटी नहीं की है कि किस कारण से आपको डांट मिलती है। अगर ये बात आप स्पष्ट करते तो हमें समझ में आता कि एग्जैक्टली कारण क्या है। बेशक हमें जीवन में खुशी भी चाहिए तो हमें शांति भी चाहिए।
हाँ जी,
कई ऐसी गहरी बातें जीवन में होती है जिस पर हमें गौर करना होता है और थोड़ा डेप्थ में जाकर के हमें उसे समझना होता है, तो वहाँ हमें शांति की जरूरत होती है। हर बात को हम कुछ हंसी बना ले, मजाक बना ले, उस टाइप का हमारा नेचर नहीं होना चाहिए। जैसे हम पढ़ते हैं महान आत्माओं का, गांधी जी भी सदा कहते थे कि वी प्ले व्हाइल यू प्ले, वर्क व्हाइल यू वर्क। जब आप काम करते हैं आप सिंसियरली काम करिए, जब आप खेलते हैं तो दिल से खेलिए। तो जीवन में दोनों चीज होनी चाहिए कि जहां आपको कोई बात गंभीरता से सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए, तो वहां आपकी पर्सनालिटी में शांति और एकाग्रता हो, वो जरूरी है। और दूसरी ओर हम कभी भी भारी ना हो और जीवन में हम हल्के रहे, खुश रहे और आई हुई बात को पार कर ले, तो वहाँ हमारे अंदर ये आनंद में खुशी में रहने का नेचर भी होना चाहिए
जी।
इसी को बैलेंस कहा जाता है कि जिस समय जिस गुण की जीवन में आवश्यकता हो उस समय उस गुण को हम धारण कर ले
जी।
तो इस प्रकार का बैलेंस जीवन में आराम से हो सकता है
जी,
है ना। कई बार हम बहुत गहरी बातें, जहां आपका कोई सिंसियरली ओपिनियन पूछा जाता है, अब वहां आप अगर गंभीर नहीं रहते हैं और ऐसे ही हल्के से बात को टाल देते हैं या ऐसा ही कोई ऊपर का जवाब दे देते हैं, तो मैं समझती हूँ कि आपको शायद लोग नाराज होते होंगे या आपके परिवार वाले नाराज होते होंगे कि जहां आपको गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है वहां आप नहीं देते हैं। तो हमारी पर्सनालिटी में बैलेंस लाना जरूरी है।
बहुत अच्छा दीदी। लेकिन ऐसे होता है यंगस्टर लाइफ में ज्यादातर ऐसा सवाल आ जाता है कि जॉलीनेस तो होता है जब कॉलेजेस में आदि हर जगह जाता है इंसान, और किसी किसी का नेचर होता है बहुत सोशल, लेकिन मैच्योरिटी भी उस टाइम घर वाले चाहते हैं कि अब ये सेटल हो जाए, मैच्योर्ड हो जाए। तो शायद उस वक्त लोगों को लगता है कि ये इतने मित्रों में क्यों जाता है, अपने काम की तरफ ध्यान दे, सिंसियर बने।
देखो जॉली नेचर का अर्थ सिर्फ ये तो नहीं कि हंसी मजाक, आनंद भी हो तो हमारे अंदर साथ साथ गंभीरता भी हो। कहते हैं ना, रमणीकता भी हो तो गंभीरता भी हो। हम हर्षित मुख होते हैं तो अंतर्मुखी भी होना जरूरी है।
अच्छा।
तो ये एक हमारी पर्सनालिटी में हम देखते हैं कई बार कि हमारी जो ये आंतरिक गुण है या शक्तियां हैं, इसमें बैलेंस ना होने के कारण हम सफल कई बार नहीं होते हैं। तो ये जैसे आयु होने पर या जवाबदारी हमारे पर आती है, कई बार मैंने देखा है आयु भी नहीं, कई छोटेपन से ही इतनी बड़ी जवाबदारी उस पर आ जाती है कि उसको सिंसियरली उसके प्रति ध्यान देना होता है। तो नेचुरली जब आपकी आयु हो जाती है और कुछ आप पढ़ते लिखते आगे बढ़ रहे हैं, तो नेचुरली माँ बाप को, परिवार को अपेक्षाएं बनती है कि अब कोई जिम्मेवारी भी ये उठाए। सिर्फ जैसे बचपन होता है, छोटा बच्चा होता है, खुद ही खा पी के चीज पूरी करेगा, उसका सारा टाइम, उसका अटेंशन अपना खाना पीना खेलने के तरफ होता है। पर व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता है वो अपनी जवाबदारियां भी समझता है और उसे उस जवाबदारी को फुलफिल करने में भी उसको आनंद आता है
जी।
तो अभिषेक जी, आपका नेचर जो आप कह रहे हैं कि जोली है, खुश रहने का है
जी,
तो बहुत अच्छी बात है। पर एक और भी, मतलब जब हम कोई जवाबदारी से कार्य संपन्न करते हैं तो हमें उस कार्य में भी आनंद आता है
जी। जी,
ऐसे नहीं है सिर्फ बातें करने में या बातों को हल्के रीति से लेने में ही आनंद आता है, ऐसा नहीं है। गंभीरता से बहुत बड़ी जिम्मेवारियां जब हम अदा करते हैं तो एक इंटरनल आंतरिक खुशी हमें ऑटोमेटिक होती है।
अच्छा।
और वो खुशी जो है वो एक बहुत बड़ी चीज होती है कि जिसमें हम कार्य भी करते हैं, भारी भी नहीं होते हैं, और जो कार्य या पुरुषार्थ करते हैं उसमें हमें आनंद भी अनुभव होता है
जी।
तो अगर आपके परिवार वाले या आपके फ्रेंड्स, आप परख लीजिए कि वो आपसे क्या अपेक्षाएं रख रहे हैं, और वो अपेक्षा अगर फुलफिल नहीं होती है तो वो नाराज होते होंगे या आपको कुछ एडवाइस करते होंगे। तो आप अपना देखिए कि लोग अब आपसे क्या चाहते हैं
जी,
और साथ साथ वो कार्य भी आप करके दिखाइए
जी। जी अभिषेक जी, आपको जरूर अपना जवाब दीदी ने दिया होगा, आपको मिला होगा इससे जवाब, और आपने क्योंकि डिटेल में हमको नहीं बताया कि क्यों आपको डांट मिलती है, लेकिन फिर भी दीदी ने अपने तरीके से आपको बहुत सहजता से कैसे इसमें बैलेंस लाना चाहिए, गंभीरता और रमणीकता, ये आपको दीदी ने बहुत अच्छे से समझाया। और हमारी यंग जनरेशन जो इसको प्रोग्राम को देखती है उनके लिए भी बहुत अच्छा सा मैसेज इसमें से मिला होगा।
देखो आज की जनरेशन कम आयु में ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर लेती है।
हाँ,
अगर कंपैरेटिवली आप देखें तो पहले लोग 16 वर्ष की आयु पर कहते हैं कि उनको सेंस आती थी, माना 16 वर्ष की आयु पर उसके अंदर सेंस आ जाती, पर आज के 12 साल की आयु में बच्चों को सारी बातें पता चल जाती है।
हाँ,
क्योंकि आज का जो एज है वो इन्फॉर्मेशन के युग से हम पास हो रहे हैं, और आज कम्युनिकेशन के इतने साधन बने हैं कि दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन हमें मिलने लगती है
जी।
तो जैसे आज आप छोटी आयु में काफी कुछ जान लेते हैं, सीख लेते हैं, तो स्वाभाविक है कि लोगों को हमसे अपेक्षाएं भी ज्यादा हो जाती है।
जी जी हाँ।
चलो भाई, पहले तो हम इतना जल्दी सब कुछ जानते ही नहीं थे, वेल इन्फॉर्म्ड होते ही नहीं थे, पर अब जबकि आप वेल इन्फॉर्म्ड है, हर प्रकार का नॉलेज आज हमें मिल रहा है।
हाँ जी।
तो फिर वो लोग नेचुरली हमसे अपेक्षा भी रखेंगे कि जितना हमारे पास इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होती है तो उस हिसाब से इतनी मैच्योरिटी भी हमारे में आती जाए।
जी जी।
तो हम ये परख लें कि जीवन में ऑलराउंड डेवलपमेंट है ना, एक है कि बातें आई और हमने खुशी से पार कर दी, पर एक है कि हमने सिंसियरली कॉन्सेंट्रेट होकर के कुछ नई चीजें की, कोई और गहराई से चीजें की, काफी कुछ डेवलपमेंट कुछ किया, तो उससे भी हमें खुशी ही होती है। ऐसा नहीं है कि जब हम सिंसियरली कोई कार्य करते हैं तो उसमें से आनंद नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा हमें लक्ष्य रखना चाहिए कि हमारी पर्सनालिटी ऑलराउंड डेवलप हो।
ओके।
है ना, भी कई लोग बहुत शांत रहते हैं, तो शांति के साथ फिर रमणीकता भी चाहिए। तो इस प्रकार जब हमारी पर्सनालिटी में हम बैलेंस रखते हैं तो हम सफल भी होते हैं और सबके प्रिय भी बन सकते हैं।
जी जी, बहुत सुंदर तरीके से दीदी ने हमको बहुत अच्छा मार्ग दिखाया है। दीदी, इसी से लेकर जैसे आपने कहा कि जिम्मेदारी का भी एहसास होना चाहिए, इसी से लेकर एक तृप्ति जी का हरियाणा से हमारे पास एक क्वेश्चन है। वो कहती है, कभी कभी हमारे ऊपर, क्योंकि माँ बाप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, बहुत प्यार देते हैं, तो कभी कभी बर्डन सा होने लगता है, क्योंकि इतनी अपेक्षाएं हो जाती है, तो उन अपेक्षाओं को हम कोप अप नहीं कर पाते उनके साथ में, तो क्या करें उस वक्त। एक्चुअली वो अपेक्षाएं ही हमारे लिए बर्डन बन जाती है, तो कुछ अच्छा करना होता है तो भी हम नहीं कर पाते हैं।
नहीं, देखो, जैसे माँ बाप आपको अति प्यार देते हैं, आपकी अति संभाल रखते हैं, आपके लिए अति सुविधाएं बनाते हैं, वो सब स्वीकार करना अगर आपको अच्छा लगता है, तो फिर जवाबदारियां उठाना या माँ बाप की अपेक्षाओं को पूरी करना वो भी अच्छा लगना चाहिए। बर्डन की क्या बात है, आप जब एक साथ सब बातें सोचते हैं तो आपको भारी लगता है कि इतना सब मैं कैसे कर पाऊंगी।
जी।
पर अभी ही सब कुछ कर लो ये कौन कहता है, वन बाय वन आप प्रैक्टिकली वो अपेक्षाएं पूरी करते जाइए।
हाँ जी।
तो उनका प्यार करना भी सफल और आपके तरफ से माँ बाप को पालना का रिटर्न देना, उसमें आप भी सफल होंगे।
माँ बाप की पालना का रिटर्न देना।
हाँ, क्योंकि अपेक्षाएं तो रखेंगे ना माता पिता। आज वो जब अपनी सब चीजों का त्याग करके वो सुख से नहीं रहते, खाते नहीं, अपने आप के लिए कुछ सुविधाएं नहीं बनाते, पर हर प्रकार से अपने बच्चों के लिए वो परिश्रम करते हैं और सब कुछ त्याग करते हैं।
जी।
तो ये बट नेचुरल है कि वो अपेक्षाएं भी रखेंगे।
जी।
पर इससे आप भारी ना हो।
जी।
वो आपके माइंड में रहे ये सारी बातें, और माँ बाप को भी आप बताएं कि जरूर आपकी जो अपेक्षाएं हैं एक के बाद एक मैं पूरी करती जाऊंगी, अभी मैं पहले अच्छी तरह पढ़ लिख के एक तैयार हो जाऊं और अपने पांव पर खड़ी हो जाऊं, फिर हमारा जीवन आप सबके लिए ही है। तो भारी होने के बजाय हम अपने माँ बाप को समझें और बताएं कि हम जरूर आपकी अपेक्षाओं को पूरी करने में भी खरे उतरेंगे, सफल रहेंगे।
जी हाँ। और अगर एजुकेशन हो भी चुका है तो भी एश्योरेंस आप उनको देकर एक एक बात पर फोकस कर सकते हैं।
बिल्कुल।
बहुत अच्छी तरह से दीदी ने आपके सवाल का जवाब दिया, तो शायद आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा और आप इस पर गौर करेंगे और अपने जो बर्डन हो चुका है उस बर्डन को कम करते हुए अटेंशन बढ़ा देंगे अपना।
इसको हम बर्डन समझे ही नहीं।
हाँ जी।
एक फर्ज है हमारी।
हाँ।
कि हमारे प्रति माँ बाप क्या चाहते हैं, हमारे टीचर्स क्या चाहते हैं, हमारी समाज हमसे क्या अपेक्षा रखता है, हमारा देश हमसे क्या चाहता है। आखिर हम जब सभी संबंधों से जीवन में भी हम प्राप्तियां करते हैं, लाभ लेते हैं, तो फिर हमारा भी अपना एक फर्ज बनता है कि हम हर रिश्तों में जो लोग हमसे चाहते हैं उसका रिटर्न भी हम दे जरूर। और मैं समझती हूँ कि जब हमारा जीवन सबकी यथार्थ अपेक्षाओं को पूरी करने में जब हम खरे उतरते हैं, सफल होते हैं
जी,
तो उसमें जो आनंद मिलता है वो एक अलग ही प्रकार का आनंद होता है और हमें इनर सेटिस्फेक्शन होता है
जी जी।
तो इसलिए हमें कभी भी इसमें भारी नहीं हो जाना चाहिए कि भाई इतनी इनको अपेक्षाएं हैं तो मैं कब पूरा कर सकूंगी। हमारी जिंदगी हमारे पास है, हम वन बाय वन जो कुछ हमसे हो सकेगा हम जरूर सबके लिए करेंगे
जी। बहुत बहुत थैंक यू दीदी। दीदी जैसे ये जिम्मेदारी की बात आई तो एक मैसेज आया था कि आनंद एक ऐसी चीज है जो हमारे पास न होते हुए भी हम दूसरों को दे सकते हैं। तो ये बात मुझे थोड़ी सी अटपटी लगी, क्या हम अंदर से खुश नहीं हैं लेकिन फिर भी औरों को आनंद दे सकते हैं? और वरना लोग भी ऐसे कहते हुए दिखते हैं कि मैं इसके ऐसे गीत भी है कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। तो क्या ये पॉसिबल होता है कि अंदर में बहुत गम या दर्द भरा है और बाहर आदमी दूसरों को आनंद देने की कोशिश कर रहा है और दे पा रहा है? इज इट पॉसिबल?
पॉसिबल है। ऐसा है कि कई बार हम अपनी तकलीफों को बहुत ज्यादा अगर महत्व दे देते हैं, माना हम उनके बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, तो फिर हम बहुत ज्यादा उसका दुख उठा लेते हैं। परंतु ठीक है, जीवन है, बातें तो आएंगी ही। बहुत हमारी मनपसंद अच्छी अच्छी बातें भी हुई है, तो कुछ नापसंद जरूरी ना हो ऐसी बातें भी होंगी जीवन में। तो इसमें हम दुखी क्यों हो, है ना? तो एक तो हम अपने आप को ऐसे बातें होते हुए भी खुद को हल्का रख सकते हैं और दूसरों के सुख के लिए प्रयास कर सकते हैं। कोई एक बात की तकलीफ आई, दुख आई, तो बस वो पूरा ही हमारे मन पर सवार हो जाए और हम उसी के कॉन्शियस बन के रहे। नहीं, ठीक है, बात आई है, उसको हल करने का प्रयास करना है, पर जिंदगी हमारी सिर्फ उसी बात में ही दिन रात सोचती रहे ऐसा नहीं होना चाहिए। हम औरों के लिए भी जवाबदार हैं, हम और कार्यों के लिए भी हैं, तो उस समय हम अपनी बात को भूल कर या एक साइड रख के दूसरों की बातों पर ध्यान दें, खुश रहे और उनको हल्का करने की कोशिश करें
जी।
बाकी हम उसी बात के ज्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे तो ना खुद खुश रहेंगे ना दूसरे को खुश कर सकेंगे
जी।
तो कई बार हमें अपनी बात को समा लेनी होती है और दूसरों को खुशी और आनंद देने का जो हमारा कर्तव्य है वो हमें बजाना होता है, तो हम कर सकते हैं।
ओके।
और हम अपना भी एक लक्ष्य रखें कि कोई बात आई है उसको सॉल्व करने के लिए हम जो कर सकते हैं वो प्रयास हम करें, और अगर हमसे नहीं हो रही है तो आप छोड़ दीजिए। मन को भारी करके जीने से क्या होता है
जी,
भाई नहीं हो रहा है हमसे, जो कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। माना कोई भी एक चीज में केंद्रित होके हम वहां ही लगे रहे ऐसा नहीं होना चाहिए
जी।
ठीक है, बात आई है, सुलझाने का प्रयास करिए। कई चीजें तुरंत नहीं भी सुलझती है, टाइम लगता है
जी,
तो केवल उसी का चिंतन न करें, हम दूसरी बातों में लग जाएं, दूसरों को भी खुश करने लगे ताकि अपना टेंशन भी कम हो जाए और दूसरों को कुछ राहत मिलेगी, वो कार्य करेंगे तो उसके फल स्वरूप हमारे अंदर भी खुशी आएगी
जी। तो हमें एडजस्ट करना भी आना चाहिए परिस्थितियों के साथ, और तकलीफ से दर्द आता है तो उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें, इस पर हमें जरूर अटेंशन रखना होगा। जैसे जिम्मेदारी की बात आती है तो वैसे एक सोशल जिम्मेदारी भी हमारी कुछ बनती है, उसी से रिलेटेड कुछ एक सवाल पूछा है। विवेक जी ने पूछा है ये सवाल लुधियाना से, वे पूछते हैं कि जब अच्छे कैरेक्टर वाले इंसान पर लांछन लगते हैं और फिर सत्य भी कुछ दिनों के बाद सामने आता है, लेकिन वो जो लांछन लगने का और वो सरल होने का कभी कभी होता भी नहीं है, सत्य सामने नहीं भी आता है, तो वह जो पीरियड होता है, वह मानसिक पीड़ा से जो गुजरना पड़ता है, जो बेइज्जती समाज में होती है, और जबकि हम समाज में इतना कार्य करके उस इज्जत को कमाते हैं, तो क्या कारण है कि ऐसे होता है कैरेक्टर, अच्छे कैरेक्टर वाले लोगों के साथ, और क्या उपाय है और क्या प्रिकॉशंस हमने लेना चाहिए?
देखो, मैंने ये देखा है कई बार कि कोई व्यक्ति हमारा द्वेष करती है या ईर्ष्या करती है, हमारा आगे बढ़ना उसको पसंद नहीं आता है, तो वो कोई ना कोई विघ्न डालने का प्रयास करते हैं।
हाँ जी,
जब कोई ऐसी बात हाथ में नहीं आती है, क्योंकि कई बार हमारे तरफ से कोई कारण ही नहीं होता है, वो हमारी प्रगति को देख नहीं पाते हैं और उसके कारण वो द्वेष करते हैं, तो फिर आखिरी शस्त्र के रूप में मैंने देखा है कई किस्से में कि वो लास्ट जो है वो हमारे कैरेक्टर पर लांछन लगाते हैं। और ये चीज एक ऐसी है कि व्यक्ति को बहुत असर कर जाती है कि भी हमारा शुद्ध चरित्र है और उस पर बिना मतलब की बातें आ जाती हैं,
तकलीफ होती है बहुत,
तो उस समय कई बार हम हिम्मत हार जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परंतु हमें वहां भी हिम्मत रखनी होती है, वहां भी हमें हिम्मत रखनी पड़ती है कि जो चीज जीवन में हुई ही नहीं है, मैंने समझो हमारे चरित्र पर कलंक लगाते हैं पर हमने ऐसा कोई काम किया ही नहीं है, तो फिर हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। उसको बिठा करके, उस व्यक्ति को बिठा करके पूछे कि आप किस आधार पर ये सारी चीज कहते हो, इसका प्रूफ क्या है, आप मुझे बताइए।
डायरेक्ट
उस व्यक्ति से ही हम बात करें कि भाई आप ये बातें किस आधार पर कर रहे हो, क्या इसका प्रमाण है, बताइए। बिगैर मतलब झूठी बातें करने का तो कोई अर्थ ही नहीं है, ये तो आपकी बुरी भावना है, बदनाम करने की कोशिश है, तो उसके क्या प्रमाण है आप बताइए। तो जब कभी भी थोड़ी बातें हमारे लिए ऐसी फैलती है तो हमें तुरंत उस बात को लेकर के उस व्यक्ति से बात करनी चाहिए, ताकि हम उसी समय इनको स्टॉप करें तो अच्छा है,
एक्चुअली
ताकि वो बात बढ़े नहीं आगे।
उन्होंने थोड़ा डिटेलिंग दिया है, पर उन्होंने कहा है कि शॉर्ट में हमें रखो आपके सामने कि असामाजिक तत्वों द्वारा उन पर वो लांछन लगाया गया, तो उन लोगों से वो कांटेक्ट डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तब वो क्या करना चाहिए उन्होंने?
आज आपके सामने कहने वाला कोई तो होगा, आपको कैसे बात मिली, जिससे भी बात मिली उनको हम पूछे ना कि भी आपको किसने कहा है,
मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करके उन पर एक आरोप लगाया गया सोशली लोगों के सामने, और वो लोग ऐसे है कि उनसे वो कांटेक्ट नहीं कर सकते, मतलब वो बहुत असामाजिक तत्व या निचले इसके लोग है, कोर्ट के साथ
जो भी रिलेटेड लोग हैं, जो हमारे सामने ये बातें लेकर के आए हैं, उनको बिठा करके उन लोगों से हम बात करें कि भी आप जो कह रहे हैं, चलो किसी के भी द्वारा आपको पता चला और किसी ने कहा, पर बात मेरे सामने तो आप ही लेके आए हैं, तो आप किस आधार पर ये कह रहे हैं, और जो बात हुई नहीं है, मैं जानता हूं ना मेरा जीवन किस प्रकार का है, तो मैं सत्य आपको बता रहा हूँ, अब मानना न मानना आपकी मर्जी की बात है, पर रियलिटी ये है।
और मीडिया में कभी ऐसी बात आती है तो फिर इन्होंने मीडिया में भी जाना चाहिए, खुद ने
अपनी तरफ से स्पष्टता जरूर करनी चाहिए।
अच्छा,
मैं तो देखती हूँ कि अखबारों में दोनों तरफ के समाचार आते हैं।
हाँ जी,
आरोप लगाने वाले अपनी तरफ से देते हैं तो स्पष्टता करने वाले भी अपनी तरफ से देते हैं,
तो देना चाहिए।
तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सच में ये काफी बदनामी हो रही है और एक छोटी सी बात से लोग बहुत बड़ी बात इसमें ले सकते हैं, तो बेटर ये है कि हमें अपना जो क्लैरिटी है वो जरूर करनी चाहिए मीडिया के साथ।
ओके। ओके,
ताकि लोग एटलीस्ट सोचने तो लगे कि भी क्या है हकीकत। कई बार हम सुन के बैठे रहते हैं, मान लो हमने हाँ, कुछ ऐसा किया ही नहीं है
हाँ,
तो हम समझते हैं हमें भारी होने की क्या हाँ, जरूरत है, मन पर लेने की क्या जरूरत है, बोलने वाले तो बोलते रहते हैं।
जी हाँ,
तो इस प्रकार हम कई बार चलते हैं कि भी अपने ऊपर भी उस बात का असर नहीं लेते हैं, पर कई बार सामने वाले लोग जब हम उसको जवाब नहीं देते हैं
हाँ,
तो वो समझते हैं कि भी ये चुप रहे हैं, माना जरूर कुछ हुआ है, तब तो ये स्वीकार कर रहे हैं, माना चुप रहने को भी वो समझते हैं कि हमारी कोई गलती है तभी हम चुप है, इसलिए हम जवाब नहीं दे रहे हैं। तो वहाँ फिर हमें क्लैरिटी करने की जरूरत होती है कि ये जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, रियलिटी ये है ही नहीं। सत्यता क्या है मैं बताती हूँ, आपको विश्वास करना है तो करिए, न करना है तो आपकी मर्जी, पर रियलिटी ये है। तो कई बार क्लैरिटी करना जरूरी हो जाता है।
ओके, क्लैरिटी करना जरूरी होता है, तो शायद आपको अपना जरूर प्रश्न का हल मिला होगा, और हमने दीदी को जितना डिटेल्स हम दे सकते थे उतना बता के आपका क्वेश्चन पूछा है, तो हो सकता है कि इसमें से आपका हल भी आपको मिल जाए और आपने क्लियर किया हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना कम्युनिकेशन एक सबसे बड़ा साधन है, या फिर मीडिया में भी आप अपनी बात जरूर रख सकते हैं, ये दीदी का सजेशन रहा है। तो दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम, आज का ये हमारा सेशन आपको कैसे लगा, और इसमें से आपको आपके जवाब मिले या नहीं मिले, आप जरूर हम तक अपनी राय पहुंचाते रहिएगा, हमें इंतजार रहता है आपके रिस्पांस का। हम फिर से आपको इसी कार्यक्रम में यही मिलेंगे, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। दीदी, आज आप स्टूडियो में आए इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।